सबके सामने जिस तरह से ऊन इसका हाथ पकड़कर स्टेज पर इसके साथ गया था, पुप्पो तो इस पर सदके वारी जा रही थी। मुझे पता था तू ऊन को अपनी तरफ रागिब कर लेगी। कैसे प्यार से बात कर रहा था तुझसे, क्यों नहीं बताया मुझे तुम दोनों में सब कुछ ठीक हो चुका है। पुप्पो इसे अपने साथ कमरे में लेकर गई और बातें करने लगी, जबकि ऊन को फोन आने की वजह से वो बाहर निकल गया। सब कुछ ठीक हो गया है ना तुम लोगों में, कितने प्यार से देख रहा था वो तुझे। मैं जानती थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू है ही इतनी खूबसूरत। अब वो इन्हें क्या बताती कि कुछ भी ठीक नहीं हुआ है, ऊन सिर्फ अपनी माँ से किया हुआ वादा निभा रहा है और कुछ नहीं। लेकिन पुप्पो की खुशी देखकर वो इन्हें ये बात बता भी नहीं सकती थी। पुप्पो मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, आरजू ने इनके करीब से उठते हुए कहा। तो पुप्पो को लगा शायद वो ऊन के बारे में बात करते हुए शर्मा रही है, इसलिए मुस्कुराते हुए इसे जाने दिया। ऊन के घर वापस आ जाने के बाद भी वो कमरे में ना गई। इसका इरादा आज भी महरिश और जरिश के कमरे में ही सोने का था, जब अचानक पुप्पो इनके कमरे में आई। तुम यहाँ क्या कर रही हो, अपने कमरे में जाओ ना। उन्होंने दोबारा ऊन को कमरे से बाहर निकलते हुए देखा, वो यकीनन इसी का इंतजार कर रहा था। जी पुप्पो, मुझे जरिश और महरिश से बातें करनी थी इसलिए यहाँ बैठ गई, वो बहाना बनाने लगी। बस बेटा बहुत बातें हो गई, अब जाओ, शोहर को इतनी देर इंतजार नहीं करवाते, न जाने कितने चक्कर लगा चुका है बाहर के, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, चलो जाओ अपने कमरे में, पुप्पो ने इसे प्यार से पुचकारते हुए कहा। आरजू मजबूर होकर उठी और कमरे से बाहर जाने लगी, जब अचानक इसका पैर मुड़ा और वो गिर गई। अचानक गिरने की वजह से बेसाख्ता एक चीख इसके मुंह से निकली, जो मेहमानों के साथ साथ ऊन को भी मतवज्जा कर गई, जो अपने कमरे के बाहर टहल रहा था। वो तेजी से भागता हुआ इसके करीब आया। आरजू ठीक तो हो ना तुम, गिर कैसे गई, वो इसे सहारा देकर उठाने लगा। ज्यादा दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास ले चलूं, वो फिक्रमंदी से पूछ रहा था, जबकि इसके लहजे की नरमी और फिक्रमंदी पूरे घर वालों को हैरान कर गई थी। नहीं मैं ठीक हूँ, इतनी ज्यादा नहीं लगी, वो इसके सहारे से उठकर खड़ी होती कहने लगी। बेटा तुम इसे अपने कमरे में ले जाओ और कोई मरहम लगा दो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, जुबैदा ने कहा। वो कहां इनकी बातों पे ध्यान देता था या कोई बात मानता था, लेकिन आज सवाल आरजू का था, वो इसे उठाकर अपने साथ ले गया। जबकि सबके सामने इस तरह से उठाने पर आरजू नजरें तक ना उठा पाई, वो इसे सीधा कमरे में लाया। कमरे में अंधेरा था। मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया था, लेकिन तुम तो पहले ही अपना पैर टरवा के बैठ गई, बहुत गलत बात है, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अगले 4 मिनट बाद तुम्हारा बर्थडे स्टार्ट हो जाएगा, मैं तुम्हारा ये बर्थडे बहुत स्पेशल बनाना चाहता था, लेकिन तुमने अपना पैर जख्मी कर लिया। वो इसे आराम से बेड पर लटाता अंधेरे में ही कोई मरहम ढूंढने लगा। एक तो पैर का दर्द, ऊपर से ऊन से कुर्बत, इसे तो जैसे अपना होश भी ना रहा था। अब कुछ बोलो भी, ऐसे ही खामोश बैठी रहोगी तो बिल्कुल नहीं चलेगा, मुझे बातें करने वाली लड़की चाहिए, गूंगी बीबी से मेरा गुजारा नहीं होता। वो इसके पैर पर मरहम लगाते हुए कहने लगा और फिर इसके पैरों पर कंबल डालकर वो उठ गया। इसके अचानक दरवाजा बंद करने पर आरजू को घबराहट होने लगी, वो क्या करने वाला था। इसके अचानक लाइट ऑन करने पर आरजू ने अपनी आंखें बंद कर दी। आंखें खोलो मेरी जान, क्योंकि अगर तुम देखोगी नहीं तो तुम्हें पसंद नहीं आएगा, और अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो मेरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, और मेरी मेहनत बर्बाद हो गई तो मेरा स्पेशल सरप्राइज खराब हो जाएगा, प्लीज इसे खराब मत करो, वो इसके कान के करीब बोला था। तो इसने फौरन अपनी आंखें खोली। हैप्पी बर्थडे मेरी स्पेशल बेबी, ऊन मुस्कुराते हुए इसके करीब बैठा। कमरा लाइट से चमक रहा था, कहीं कहीं गुब्बारे लगे थे। आज तक मैंने जो भी गलतियां की हैं, प्लीज मुझे सबके लिए माफ कर दो, जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है, बहुत गलत किया है, तुम्हारे ख्वाबों की तबीयत इतनी भयानक की है कि शायद मुझे कभी माफ ना करो, लेकिन फिर भी तुमसे एक मौका मांगता हूँ। आरजू मैं तुम्हारे लिए ही तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर रहा था, मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे पसंद करो या मुझसे प्यार करने लगो, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, پلیز مجھے معاف کر دو، پلیز معاف کر دو۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامے زمین پر بیٹھا اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ شاید یہ سب ڈرامہ تھا، شاید اس کی ماں کے سامنے یہ بات ظاہر کرنے کا کہ وہ دونوں ایک مکمل کپل ہیں۔ لیکن پھر بھی پپھو کے سامنے شرمندہ نہیں ہو سکتی تھی، وہ چاہے یا نہ چاہے اسے اون کی محبت قبول کرنی تھی، جھوٹی ہی سہی۔ اس نے اپنی پپھو کو یہ بات بتانی تھی کہ اس نے کوشش ضرور کی اس رشتے کو نبھانے کی۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں پر رکھا۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، میں آپ کو دل سے معاف کرتی ہوں۔ اور پھر وہ نازک سی لڑکی اس کے سامنے ہار گئی، جب اگلے ہی لمحے اون نے اسے اپنے سینے میں بینچ لیا۔ تھینک یو سو مچ آرزو، میں تمہارا یہ احسان مرتے دم تک نہیں بھولوں گا اور تمہارا یہ برتھ ڈے بہت اسپیشل بناؤں گا۔ سب سے پہلے ہم کیک کاٹتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب سے اٹھا اور کیک لا کے سامنے رکھا۔ چلو کاٹو۔ وہ نائف اپنے ہاتھ میں لیے اس کے ہاتھ میں پکڑا کر کیک کاٹنے لگا اور ساتھ میں گنگنانے بھی لگا۔ چلو اٹھو جلدی سے، لانگ ڈرائیو پہ چلتے ہیں، وہ کیک کا ٹکڑا اپنے ہاتھوں سے کھلاتے ہوئے کہنے لگا۔ جلدی کرو، 12 بجے سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہے، وہ اسے بولنے کا موقع دیے بغیر ہاتھ پکڑ کر اٹھانے لگا۔ گھر میں کوئی نہیں پوچھے گا، اگر کسی نے پوچھا تو کہہ دینا پیر میں بہت درد ہے، ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں۔ میں گاڑی نکالتا ہوں، آہستہ آہستہ آنا، درد نہ ہو پیر میں۔ وہ کہتے ہوئے باہر نکل گیا جبکہ آرزو آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چلنے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی دروازے کی طرف جا رہی تھی جب اچانک سے پیچھے سے آتی تائی امی نے پوچھا، آرزو کہاں جا رہی ہو؟ وہ بکھلا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ پھر اچانک ہی اسے اون کی بات یاد آ گئی کہ اگر کسی نے پوچھا تو کہہ دینا کہ پیر میں زیادہ درد ہے، اس لیے ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں۔ وہ تائی امی، پاؤں میں زیادہ درد ہے اس لیے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں۔ آرزو کو جھوٹ بولتے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ ہائے میری بچی، ایک منٹ میں ابھی حارث کو بلاتی ہوں، تائی امی نے فوراً کہا۔ نہیں، میں اون جی کے ساتھ جا رہی ہوں، آرزو نے جلدی سے کہا تو تائی امی مسکرانے لگی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بیٹا ضرور جاؤ۔ بہت خوشی ہوئی تم دونوں کو ایک ساتھ ہنسی خوشی دیکھ کر، اللہ تم دونوں کو خوش رکھے۔ وہ انہیں دعا دیتی کمرے کی طرف جانے لگی جبکہ اون اسے تائی امی کے پاس کھڑا دیکھ چکا تھا۔ خبر پہنچ گئی اب پورے گھر میں، پھیل جائے گی، وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ تائی امی تو پوری نیوز کاسٹر ہیں، اون نے کہا تو آرزو کو اچھا نہ لگا۔ ایسی بات نہیں ہے، تائی امی تو بہت اچھی ہیں، آرزو من منائی۔ ہاں ہاں سب اچھے ہیں، بس تمہارا شوہر اچھا نہیں ہے، جس کے پاس آتے ہوئے 1000 بار سوچتی ہو۔ لیکن میرا نام بھی اون سوچ سمجھ کر رکھا گیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے بٹھانے لگا۔ وہ اسے ہاسپٹل تو ہرگز نہیں لے کے گیا تھا، سب سے پہلے وہ اسے آئس کریم پارلر لے کے گیا۔ تمہارا فیورٹ فلیور کون سا ہے؟ چھوڑو جو بھی ہے، آج سے تم میرا فیورٹ کھاؤ گی، وہ کہہ کر پارلر کے اندر چلا گیا۔ آرزو کو کہاں عادت تھی اپنی پسند کی کوئی چیز کھانے یا فرمائش کرنے کی، وہ خاموشی سے وہیں بیٹھ گئی۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد اون اس کے لیے آئس کریم لے کے آیا۔ یہ لے جانے من، آپ کی خدمت میں حاضر ہے، آپ کے شوہر کا فیورٹ آئس کریم فلیور۔ وہ ایک ادا سے کہتا آئس کریم اس کے سامنے پیش کرنے لگا۔ تھینک یو اون جی، وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ ہائے میں صدقے، اون جی، لڑکی یہ انداز کہاں سے سیکھا ہے سامنے والے کو قتل کرنے کا؟ وہ شرارتی انداز میں کہتا پوچھنے لگا۔ آرزو کنفیوز سی بیٹھی اس کے کسی سوال کا ٹھیک سے جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ آئس کریم کھلانے کے بعد وہ اسے اپنے ساتھ لانگ ڈرائیو پہ لے گیا۔ سارے راستے گاڑی میں رومانٹک سانگ بجتے رہے۔ تمہیں پتا ہے آج سے پہلے مجھے رومانٹک سانگ سے چڑ تھی، لیکن آج لگ رہا ہے جیسے سب کے سب میرے دل کا حال بیان کر رہے ہوں۔ تم نے مجھے بدل کر رکھ دیا ہے آرزو، تھینک یو سو مچ میری زندگی میں آنے کے لیے، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، اون نے اس کا ہاتھ تھام کر چومتے ہوئے کہا۔ جبکہ اس کی اس حرکت پر آرزو کا ننھا سا دل کانپ کر رہ گیا۔ تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو آرزو؟ تمہارا ہاتھ اتنا ٹھنڈا کیوں ہے؟ वो इसका हाथ अपने हाथ में लिए पूछ रहा था। नहीं तो, हाथ ठंडा, पता नहीं, वो हर बात का अधूरा सा जवाब दे रही थी जब ऊन बेसाख्ता मुस्कुराया। ओ तो मेरी बीवी मुझसे घबरा रही है। डार्लिंग, मैं कोई गैर तो नहीं, तुम्हारा शोहर हूँ, वो इसकी घबराहट को इंजॉय करते हुए बोला, जबकि आरजू बस इसे देख कर रह गई। क्या सब कुछ ड्रामा था? क्या वो सिर्फ अपना मतलब पूरा करने के लिए इसे धोखा दे रहा था? वो जो इसके साथ खुद को महफूज महसूस कर रही थी, वो तो इसका मुखालिफ था, इसका शोहर था। बेशक वो इसकी मोहब्बत ना सही, लेकिन बीवी तो है। ये भी तो हो सकता है कि एक वक्त में वो इसे अपना बनाने में कामयाब हो जाए। आखिर पुप्पो ने इसकी जिंदगी ऐसे ही तो दाव पर ना लगाई होगी। पुप्पो को इस पर यकीन था, तो वो अपने आप पर यकीन क्यों नहीं कर पा रही थी? बेशक ऊन सिर्फ दिखावा कर रहा था इससे मोहब्बत का, लेकिन वो तो दिखावा नहीं कर रही थी, वो तो इसकी बीवी थी, और इसे तो इसी शख्स की बीवी बनकर रहना था। इसे तामिया को ऊन की जिंदगी से निकालना था, ना कि खुद ऊन की जिंदगी से निकलना था। इसे पुप्पो की उम्मीदों पर पूरा उतरना था, इन्हें इनका बेटा वापिस करना था। मैं ऊन को खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर करूंगी, मैं तामिया को इनकी जिंदगी से निकाल कर रहूंगी, सारी जिंदगी अपना हक दूसरों को छीनने नहीं दूंगी। ऊन मेरे शोहर हैं और मेरे ही रहेंगे, वो मुझे अपनी बीवी माने या ना माने, लेकिन वो मेरे शोहर हैं और मैं पुप्पो का बेटा इन्हें वापिस जरूर करूंगी। मैं ऊन को किसी दूसरी राह पर नहीं जाने दूंगी, वो खुद से अहद करती ऊन को देख रही थी। हाय, मार डालोगी क्या? ऊन ने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, तो वो बेसाहता अपनी नजर चुरा गई और ऊन कहका लगाकर हंस दिया। घर आने तक आरजू ने अपने आप को इस रिश्ते को निभाने के लिए मुकम्मल तैयार कर लिया था। इसने सोच लिया था कि वो ऊन के साथ एक नया रिश्ता बनाएगी और फिर इसे कभी इस रिश्ते से आजाद नहीं होने देगी। वो गाड़ी रोकने गया तो आरजू कमरे में आकर इसका इंतजार करने लगी। घबराहट हद से ज्यादा सवार थी, लेकिन आज इसे घबराना नहीं था, इसे ऊन को पाना था हमेशा के लिए। लेकिन क्या वो तामिया का मुकाबला कर पाएगी? क्या अपने ही शोहर को एक गैर औरत से छीन लेगी? वो इन्हीं सोचों में गुम थी जब अचानक पीछे से किसी ने इसे अपनी बाहों में ले लिया। गहरी सोचों में क्या सोच रही हो? मुझे जलन हो रही है। तुम्हारे ऊन जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा तुम इसे छोड़कर किसी और की सोचों में गुम रहो, वो शरारत से बोला। मैं आप ही को सोच रही थी, आरजू बेसाख्ता बोली तो वो खुलकर मुस्कुराया। लड़की, तुम्हें तो दिल खुश करना आता है, तुमने मुझे इतनी बड़ी गलती के लिए माफ कर दिया, मैं तुम्हारा ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। तुम सोच भी नहीं सकती मैं कितना परेशान था ये सोच के कि क्या मेरी आरजू मुझे माफ करेगी। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मैंने तुम्हारे ख्वाब तोड़ दिए, तुम्हारे साथ इतना बुरा रवैया रखा, इसके बावजूद तुमने मुझे माफ कर दिया, थैंक यू सो मच, वो इसके दोनों हाथ चूम कर बोला। काफी थक गई हो, सो जाओ, वो इसे कहता वॉशरूम में जाने लगा। क्या मतलब? आरजू परेशान होकर बोली। इसके इस तरह से परेशान होने पर वो मुस्कुराया। हाय, इस सादगी पे कौन ना मर मिटे, मेरा मतलब ये है जान, आप थक गई हैं, सो जाएं। आरजू, मैंने तुमसे मोहब्बत की है, मैं जानता हूँ तुम फिलहाल इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं कर पा रही, और जब तक तुम इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं करती मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा, जब तक तुम खुद मुझे अपने पास नहीं बुलाती, लेकिन मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं करूंगा। मैं तुम्हें हमारे रिश्ते को समझने का थोड़ा सा वक्त दे रहा हूँ, और थोड़े से वक्त का मतलब बस थोड़ा सा वक्त है, ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता मैं, लेकिन तुम्हारी इजाजत के बगैर छोटी मोटी गुस्ताही होती रहेगी, अब जाओ आराम करो, वो शरारत से आंख दुबाकर कहता हुआ वॉशरूम में चला गया। जबकि आरजू समझ नहीं पा रही थी कि ये ऊन को क्या हो गया है, वो इसीलिए तो इससे इतनी नरमी से बात कर रहा था कि वो इसके करीब आकर अपना मतलब पूरा कर सके, अपनी माँ पे ये जाहिर कर सके कि वो इस शर्त को निभा रहा है। तो क्या अब सच में ऊन इससे प्यार करता है? तो फिर तामिया? सोचते सोचते इसका सर दुखने लगा। तामिया सारी रात परेशानी से इधर से उधर टहलती रही। क्या क्या नहीं सोचा था इसने कि इस तरह से आरजू की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और फिर से वो इसे इसी मुकाम पर ला पटकेगी जहां से ऊन इसे निकाल कर ले गया था। वो हमेशा से इससे जलती आई थी, इसकी खूबसूरती से, इसकी मासूमियत से, यहाँ तक कि वो इसकी सादा सी जिंदगी से भी जलने लगी थी। वो इससे इतनी नफरत करने लगी थी कि इसे बर्बाद करने के लिए कोई भी इंतहा पार करने को तैयार थी। वो सारी रात ऊन को फोन करती रही, जबकि ऊन का फोन साइलेंट पर था और वो आराम से सो रहा था। सुबह हुशी हुशी ऊन अपने काम पर गया और उमर को ये गुड न्यूज सुनाई कि आरजू ने इसकी सारी खताओं के लिए माफ कर दिया है। उमर को खुशी हुई, ये तो बहुत अच्छी खबर है, शुक्र है सब कुछ ठीक हो गया। अब बस तू भाभी को लेकर मेरे घर डिनर पर आ, मिसबा तो मेरे पीछे पड़ी है कि उसके ऊन भाई की शादी हो गई और इसे पता भी नहीं चला। खैर पता तो मुझे भी नहीं चला, उमर सर्द आह भर कर बोला। हाय मेरे छुआरे, बाकी सब कुछ तो ठीक है लेकिन इस डायन का कुछ कर। ऊन ने अपने फोन की तरफ इशारा किया जहां तामिया का फोन आ रहा था। मेरा ख्याल है इस लड़की से एक बार मिलकर मैं सारा किस्सा सेट कर लूं, मुझे इसे समझाना ही पड़ेगा। ऊन ने तंग आते हुए फोन एक बार फिर से बंद कर दिया, लेकिन फोन फिर से बजने लगा। इसने कुछ सोचा और कॉल अटेंड की। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, कहाँ मिलने आओगी, वो पूछने लगा। तामिया को लगा जैसे इसका मकसद कामयाब हो गया, इसकी जान में जान आ गई। इसने जल्दी से ऊन को अपने आने का पता बताया। मैं कल तुमसे मिलने आऊंगा, ऊन ने बस इतना कहकर फोन बंद कर दिया। वो घर आकर सबसे पहले इसे देखना चाहता था। वो इसे ढूंढते हुए सबसे पहले किचन में आया। इसके अंदाजे के ऐन मुताबिक वो किचन में ही थी। आरजू मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, वो इसके पीछे आकर कहने लगा। वो अपने हाथ से एक शॉपर इसे देने लगा जिसमें बहुत सारी चूड़ियां और शायद पायल थी। आपको तो ये नहीं पसंद, आरजू कुछ समझने की कोशिश में बोली। मेरी जान मत याद दिलाओ, मेरी जिंदगी के स्याह तरीन दिन, तुम्हारे हाथ में चूड़ियां बहुत सचती हैं। जल्दी से इन्हें पहनो और मुझे मेरे कपड़े निकाल कर दो, ऊन ने हुक्म दिया। आपके कपड़े तो आपकी अलमारी में हैं ऊन जी, आरजू ने कहा। और इसके ऊन जी कहने पर ऊन ने एक बार फिर से अपना दिल थामा। जानता हूँ मेरे कपड़े मेरी अलमारी में हैं, लेकिन मुझे मेरे कपड़े निकालकर तुम दोगी, इन्हें इस्त्री करके तुम दोगी, आज से मेरे सारे काम तुम करोगी। जल्दी आओ, मैं कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, वो इसका गाल चूमकर बोला, जबकि इसकी इस हरकत पर आरजू बौखलाकर इधर उधर देखने लगी। रिलैक्स मेरी जान, किसी ने नहीं देखा, वो इसकी हालत से लुत्फ अंदोज होते हुए बोला और बाहर निकल गया। जबकि आरजू फौरन किचन से बाहर निकलकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी, जहां हानिया बाहर खड़ी शरारती नजरों से देख रही थी। मैंने कुछ नहीं देखा, वो शरारत से कहती किचन में चली गई, जबकि आरजू शर्मिंदा सी अपने कमरे की तरफ भाग गई। सुबह उन तामिया से मिलने रेस्टोरेंट में आया था। ये थी दीदारे इश्कम की 6 एपिसोड। एपिसोड अच्छी लगने पर इसको अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एपिसोड आपको इजीली मिल सके।